ओम शांति। आप सोच रहे होंगे मैं आ गया। नौ जनवरी की मुरली है। मीठे बच्चे, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। बहुत ही सुंदर बात आ गई है, यह बहुत अच्छा बना हुआ है। चिंतनीय बात, बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को अभी तुम जानते हो। फुल नॉलेज दे दी है बाबा ने ड्रामा की, कहां से आदि हुई, बीच में क्या क्या हुआ और एंड कैसे होगा, अब क्या हो रहा है, सब तुम जानते हो। प्रश्न है, किस कशिश के आधार पर आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएंगी? सुंदर मुरली है बहुत। सेवाओं में कैसे वृद्धि होती है, इसका बहुत सूक्ष्म स्वरूप इस महावाक्य में है। पवित्रता और योग की कशिश से, जितनी प्योरिटी, जितना योग, उसका आकर्षण होगा, आत्माएं खींची खींची आएंगी। सेवा वृद्धि का यही आधार है, इसी से तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे, देखेंगे कि इतने ढेर सारे वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारी कशिश बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये दोनों चीजें बढ़ेंगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह मालूम है कि हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, साथ साथ अनुभव करेंगे। ज्ञान तो हम सबको ये है ही, लेकिन इन चीजों को साथ साथ रियलाइज करने से मुरली हमारे लिए बहुत सुंदर वरदान बन जाती है। बुद्धि में है ना, बाबा पूछ रहे हैं। जब बाबा सामने बैठते थे साकार में, तो आत्माओं से बातें करते थे। तुम्हें याद है ना, तुम परम धाम से आते हो। जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं, थोड़ी सी रहती हैं, तब बाप आते हैं। अभी तुम बच्चों को किसी को भी समझाना बहुत सहज है कि दूर देश रहने वाला पिछाड़ी में आते हैं, जब थोड़े से ऊपर रह जाते हैं, थोड़ी आत्माएं ऊपर रह गई तब आते हैं। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है, यह भी जानते हो कि बाप को और सृष्टि के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। ये हम सबको छोटी बात लगती है, पर ये सबसे बड़ी बात है। वेद शास्त्र, बहुत सारे ग्रंथ, हर धर्म के शास्त्र, लेकिन न कोई भगवान को जान पाया, न सृष्टि के आदि मध्यंत को। यह बेहद का ड्रामा है, तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए, जैसे हद के एक्टर्स को मालूम होता है फलाने फलाने को ये पार्ट मिला है। जो चीज पास्ट हो जाती है फिर उसका छोटा ड्रामा बनाते हैं, फ्यूचर का तो ड्रामा बना नहीं सकते। पास्ट जो हुआ उसे लेकर और कुछ कहानियां बनाकर ड्रामा तैयार करते लौकिक में, फ्यूचर को तो जानते नहीं। अब तुम समझते हो बाप आया है और क्या कर रहा है, स्थापना। ये भी बहुत बड़ा रहस्य है हम सबके लिए, क्योंकि हम रोज सुनते हैं, कॉमन है, पर भगवान ने स्थापना कैसे की बहुत डीप फिलोसोफी है। कैसे वो आकर ज्ञान देकर पावन बनाकर प्रकृति को भी पवित्र कर देता है और दुनिया पावन हो जाती है, स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। हम वर्षा पा रहे हैं, जो जो आते रहेंगे उनको हम रास्ता बताते हैं। किस चीज का बोलो, किस चीज का रास्ता? घर का और देवी देवता बनने का। इसका तो किसी को कल्पना भी नहीं थी दुनिया में। मुक्ति की बात तो करते थे, यह देवता इतने ऊंचे कैसे बने किसी को भी पता नहीं। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है, अपने धर्म को भूल जाते हैं तो भिन्न भिन्न बातें कहते हैं, सब धर्म एक ही हैं, कहीं से भी पहुंच जाएंगे भगवान के पास। हमारे लिए तो सब धर्म एक ही हैं, क्योंकि जानते नहीं हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, फिर से नशे की बात। हमें बाबा पढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ा नशा मनुष्य को पढ़ाते आए, देवताओं ने देवताओं को पढ़ाया और अब हमें पढ़ा रहे हैं विष्णु। स्वयं भगवान बाबा के डायरेक्शन से ये चित्र बने हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे, कोई फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते थे। दिव्य दृष्टि का रोल शुरू में बहुत सुंदर चला, बाबा दिव्य दृष्टि देते थे और चित्र देख कर आते थे ऊपर, फिर बनाते थे। जो कल्प वृक्ष बना उसकी बड़ी अच्छी कहानी थी। शिव बाबा आए और कहा, आज वतन में ऐसा ऐसा एक वृक्ष इमर्ज हुआ, उसका पूरा चित्र खींच दिया। और आपको पता, हमारे विश्व रतन दादा वो आर्टिस्ट बने, उन्होंने ऐसा ऐसा कल्प वृक्ष बना दिया। बाबा ने सब चित्र खींच दिया, इधर धर्मों की डालियां बनाओ, पत्ते बनाओ, धर्म दिखाओ। दादा ने वो सब बना दिया हल्का सलका, फिर तो आर्टिस्ट आए, उन्होंने उसको सुंदर बनाया। विदेशियों ने और जरा उसको उल्टा कल्प वृक्ष कर दिया है, तो उल्टा ही। यह भी समझाया है, यह जरूर लिखो, पाठधारी एक्टर्स तो हैं, परंतु डायरेक्टर क्रिएटर को कोई जानता नहीं। बाप अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, पुरानी से नई दुनिया बनती है, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में ही बाबा कर तुमको ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कैसे अच्छी रची है, ब्राह्मण बनाएंगे फिर देवता बनेंगे। भले यह है अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु है बहुत अच्छा। बाबा को भी अच्छा लग रहा है ड्रामा, जो सोचते हैं ना, ये क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर रिपीट होगा क्या? बड़े दुखी होते हैं कई लोग, ये खराब हुआ कल्प के बाद फिर होगा। बाबा कहते हैं ये बना बनाया अच्छा ड्रामा है। फिर कहते हैं फिर मैं मुरली सुनाऊंगा 5000 वर्ष के बाद। सेंटरों में सुनाते रहते हैं, जाते हैं ना, बहने बहुत कहती हैं मुरली सुनाओ। बाप कहते हैं तुमको गुइये गुइये बातें नित्य सुनाता हूं, जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। अब भी हो गई है, बाकी जो बचा है वो भी हो जाएगी। फिर सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी, प्रैक्टिकल में एक्ट करते रहते हो। पास्ट का किसको सुनाएंगे? देवता। यह लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल नहीं जानते, पास्ट होता ही नहीं कुछ सब तो। तुम्हारी बुद्धि में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब है, कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई मिलेगी और कैसे नहीं गंवाने से पहले ही कुछ और। मेजर साहब कैसे महल बनाएंगे, आता है महल तो हम सब यहां भी नहीं बनाते मकान, फिर भी सुरेश भाई हाँ जल्दी तो बनेंगे क्योंकि साइंस की टेक्नोलॉजी बहुत रिफाइन होती जाएगी, फटाफट बनेंगे। बनेंगे तो जरूर, स्वर्ग की सीन सीनरियां अलग हैं, जैसे जैसे पार्ट बजाते रहेंगे तुमको मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहते हैं खूने नाहक खेल, बिना कारण, नाहक माना बिना कारण। नाहक नुकसान होता है, अर्थक्वेक्स होती हैं, कितना नुकसान होता है, बॉम्ब्स फेंकते हैं, यह नाहक है ना, कोई भी मर जाते हैं बिना कारण ही, डालेंगे कहीं पड़ेगा कहीं, कोई कुछ करता थोड़े ही है। विशाल बुद्धि जो हैं वे समझते हैं विनाश बरोबर हुआ था, क्योंकि चक्र घूमता है, जरूर मारा मारी हुई थी, ऐसा खेल भी बनाते हैं। यह तो समझ भी सकते हैं कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो, तुम अब उस राजधानी के मालिक भी बनते हो, तुम जानते हो अभी नई दुनिया में चलना जरूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियां द्वारा नॉलेज लेते हैं तो वहां आ जाते हैं सतयुग में, रहते तो अपने घर गृहस्थ में हैं, बहुतों को तो जान भी न सको। सेंटर पर कितने आते हैं, अभी तो लाखों आते हैं, तब बाबा के समय तो 10,000 तक ही संख्या पहुंची थी और बाबा अव्यक्त हुए तो 5 रह गई थी एक झटके में, आधी पूरी हो गई थी। 76 में फिर 50,000 तक पहुंची, फिर विनाश नहीं हुआ, फिर 25 पे आ गई, ये खेल चलता आया है। सेंटर पर कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़ा ही रहेंगे, कितने ब्राह्मण हैं, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे, एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सके। राजा को मालूम थोड़ा ही पड़ता है हमारी एक्यूरेट प्रजा कितनी है, भले ही आदमशुमारी आदि निकालते हैं फिर भी फर्क पड़ जाता है। अब तुम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट है, सब भाइयों को याद करना है एक बाप को। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है बाबा बाबा कहो, यह भी तुम जानते हो आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। वो समय भी आ गया ना, एक वो समय था बाबा के समय, किसी को ज्ञान दिया जाता था तो बहुत डिस्कस होता था, जैसे हर व्यक्ति जो ज्ञान लेने आता था आत्मा पर भी बहुत डिबेट करता था, परमात्मा के ज्ञान पर तो बहुत डिबेट। अब सेंटर्स में भाई बहने आते हैं ना, अब डिबेट बहुत कम रह गई, पहले तो शास्त्र वाले जगदीश भाई ने कितना दिमाग खाया था पता, और समझाने वाली कौन थी, यीशु दादी, कुंज दादी, जिनको शास्त्र आदि का कुछ पता नहीं था, बड़ा दिमाग खाया, सोचते थे ये आए नहीं परेशान हो जाते थे ये क्यों आता है, फिर भी आता था तो अब तो फट से जान जाएंगे, देखेंगे इतने सब ढेर वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी तुम में कशिश बढ़ती जाएगी, पवित्र बनने से कशिश होती है, जितना योग में रहेंगे उतनी कशिश होगी, औरों को भी खींचेंगे, बाप भी खींचते हैं ना, बहुत वृद्धि को पाते हैं। इसके लिए युक्तियां भी रची जा रही हैं, गीता का भगवान कौन। कृष्ण को याद करना तो सहज है क्योंकि साकार में है। निराकार बाप कहते हैं माम एकम याद करो, इस बात पर ही सारा मदार है। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो, ओपिनियन लिखाते रहो। उन दिनों ये काम बहुत चला था, बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्यों को पता चलेगा वे इतने सब स्वीकार करते हैं तो ये बात सत्य है। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। एक राज और है ये हमारा निश्चय, पावरफुल निश्चय। थोड़ा थोड़ा डाउट होता रहता है ना ब्राह्मणों को भी, बाबा नहीं आता क्या होगा, ये भी डाउट माना जाता है। विनाश तो होता नहीं, लोग लड़ते हैं फिर से अंत हो जाते हैं, कुछ तो होता नहीं, कहते ही आ रहे हैं अगली दिवाली नहीं देखेंगे, इतनी तो बीत गई। संशय आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो इन रहस्यों को जानते हैं उनको संशय नहीं आता। माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे, क्योंकि सुख संवाद आ रही है मुरली में, विजय पाली फिर न पुरुषार्थ रहेगा न माया रहेगी, सब समाप्त हो जाएगा। तो सूक्ष्म सूक्ष्म भी पुरुषार्थ करते रहना, अंत तक याद में ही बहुत करके हारते हैं। जितना तुम योग में मजबूत होंगे उतने हारेंगे नहीं माया से। यह राजधानी स्थापित हो रही है, बच्चों को निश्चय है हमारी राजाई होगी, फिर हम हीरे जवाहर कहां से लाएंगे, खानियां सब कहां से आएंगी। यह सब थे तो सही ना, पहले थे फिर आ जाएंगे, धरती भी फूल हो जाएगी, माल धरती में ही तो सारा है। छत्तीसगढ़ में बताया हमें कि 9 किलोमीटर नीचे बहुत बड़ी खान देखी गई हीरो की, बहुत बहुत बड़ी, लेकिन उसको निकालना सहज काम नहीं है। 9 किलोमीटर तो वो तो निकाल ही नहीं सकते, कलयुगी लोगों के वो काम नहीं होगी। एक झटका लगेगा सब माल ऊपर, काम आएगी पवित्र आत्माओं के, जो हीरे बनेंगे उनके ही तो काम आएंगे हीरे, अब कलयुगी मनुष्यों के कहाँ काम आएंगे। इसमें मूंझने की बात नहीं, जो होना है प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्वर्ग बनना तो जरूर है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको निश्चय रहेगा हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, हीरो के महल बनाएंगे। यह निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको ये ख्याल नहीं आएगा कि महल आदि कैसे बनाएंगे, सीधी सी बात है ना भाई। जो राजा बनेंगे उनको ही ख्याल आएगा, जो साधारण बनने वाले उनको ख्याल नहीं आएगा। जो बच्चे बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना, दास दासी भी तैयार मिलेंगे, तैयार करना नहीं पड़ेगा दास दासी को, सब तैयार मिल जाएंगे। सर्विसेबल बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे, बच्चे भी समझते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। हम तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे, जिनका पुरुषार्थ ढीला है। जैसे ये बाबा है, कौन सा बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाबा को ख्यालात रहती है, बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन की तरह चल जाती है। कभी कभी हो जाता था बाबा को, जब श्री कृष्ण बनने का नशा होता था ना, तो जिन्होंने नजदीक से देखा वो दीदी मनमोहिनी सुनाती थी, वो पास रहती थी ना, दो ही आत्माएं ज्यादा पास रही, पीछे दीदी मनमोहिनी 3 साल मामा के जाने के बाद, और ईसु दादी तो बाबा के साथ ही रहती थी। ये मुरली पता किसने लिखी सब साथ साथ, ईसु दादी थी, 100 ठेंड सीख ली थी, अपनी बना ली थी भाई, मन मना भाव कहेगा बाबा तो ये, देह सहित देह के संबंध छोड़ मुझे याद करो तो ये, बस सारा लिखना नहीं पड़ा। तो देखो बाबा ने किन किन से सब बड़े काम कराए। नहीं तो कोई कहेगा भगवान के महावाक्य कोई एमए पीएचडी किया हुआ लिखे। और बाबा ने उनको डिवाइन बुद्धि दे दी तो थोड़े पढ़े लिखे जिन्होंने वहीं पढ़ा था वो बाबा के महावाक्य को लिखने लगे। तो लौकिक पढ़ाई का महत्व नहीं, महत्व श्रेष्ठ बुद्धि का है। डिवाइन बुद्धि किसकी कितनी बनती है, मैं सोचा करता हूं कि गुह्य बात कोई भी मिस नहीं हुई है मुरलियों में। तो ईसु दादी ने ये सब लिखा, उसका काम ही था फटाफट लिखना, फिर वो छपती थी, फिर उसको पूरा लिख के भी देती थी ना, तो कितना बड़ा काम होता था और मुरली अब से डबल होती थी तब। बाबा को तो एक ही एक्ट है, शिव बाबा की तो एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना और सिखलाना। विजयमाला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना पड़े तब उच्च बनेंगे। यह तो समझ की बात है। बाप कहते हैं हम रहेंगे तो याद हम जो सुनते हैं उस पर, हम जो सुनाते हैं उस पर जज करो। बाबा के सामने ऐसे बच्चे बैठे रहते थे ना, संशय बुद्धि भी, जज करो। आगे चल और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा, नजदीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी। किसकी? घर की और राजधानी की। 5000 वर्ष हुए हम अपनी राजधानी से लौटे हैं, याद दिला रहे बाबा। 5000 वर्ष हो गए, कहां से कहां पहुंच गए, 84 जन्मों का चक्र लगा कर आए हैं। जैसे वास्को डी गामा के लिए कहते हैं वर्ल्ड का चक्र लगाया, तुमने इस वर्ल्ड में 84 का चक्र लगाया है। वो वास्को डी गामा एक गया ना, एक यह भी एक है जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं। डिनास्टी चलती है तो अपने अंदर देखना है, हमारे अंदर कोई देह अभिमान तो नहीं है। बाबा रियलाइज करा रहे, ज्ञान भी दे रहे, फंक तो नहीं हो जाते हैं, निराश घबरा तो नहीं जाते, कहीं बिगड़ते तो नहीं है। बाबा शिक्षाएं दे रहे हैं, तुम योग बल में होंगे। अब ये बहुत ही गहरी बात है, उन दिनों की भी बहुत प्रैक्टिकल थी, क्योंकि बहनें माताएं सवेरे सवेरे क्लास में आती थी। जैसे दिल्ली में जब हम थे तो देखते थे माताएं दूर से बसों में बैठेंगी, सवेरे 2-3-4 स्टॉप के बाद सेंटर के नजदीक पहुंचेंगे, वहां से पैदल आएंगी। तो बाबा ने बहुत गहरा राज बताया, तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा की याद में होंगे तो तुमको कोई चमाट आदि भी मार नहीं सकेंगे। डर भी रहता था ना चोरी का, बाबा कहते थे कोई तुमको देखेगा भी नहीं, योग बल ढाल है, कोई कुछ भी कर नहीं सकते। विनाश काल के लिए भी बहुत सुंदर बात है ये। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर देह अभिमान है। कोई गिर जाते थे ना, बाबा पहाड़ी पे ले जाते थे, कोई गिर गए तो कहते थे देह अभिमान है। देही अभिमानी को चोट कोई मार न सके, भूल अपनी होती है। विवेक ऐसा ही कहता है, देही अभिमानी को कोई कुछ कर नहीं सकेंगे, इसलिए कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। बहुत ही बड़ा राज है ये विनाश काल में भी। जो सोल कॉन्शियस होंगे बहुत सेफ रहेंगे, कोई उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, नहीं तो चोरी लूट मार ये सब भी बहुत होना है ना विनाश काल में। सबको पैगाम भी देना है, भगवान वाच मन मना भव, कौन सा भगवान ये भी तुम बच्चों को समझाना है। बस इस एक बात में तुम्हारी विजय होनी है, सारी दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि में कृष्ण भगवान वाच है। अब तुम समझाते हो तो कहते हैं बात तो बराबर ठीक है, पर जब तुम्हारे मौखिक समझे तब कहेंगे बाबा जो समझाते हैं वह ठीक है। कृष्ण थोड़े ही कहेंगे मैं ऐसा हूं, मेरे को कोई नहीं जान सकते। गीता में भी ये महावाक्य है, मुझे कोई नहीं जान सकते, मुझे साधारण समझकर मेरी ग्लानी करते हैं। तो बाबा ये पॉइंट सुना रहे गीता का ज्ञान समझाने के लिए, श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा ने दिया। कृष्ण को तो सब जान ले, में ऐसे भी नहीं कि कृष्ण के तन में भगवान कहते हैं, ये भी एक मान्यता थी कि श्री कृष्ण ने नहीं उनके तन में परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया। और ये उसमें अनुभव हुआ लोगों को कि जब गीता ज्ञान बोल रहे हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा, कोई और शक्ति बोल रही है। तो इसलिए ये भी नहीं कि कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं, नहीं, कृष्ण तो होता ही है सतयुग में, वहां कैसे भगवान आएंगे, भगवान तो आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो तुम बच्चे बहुतों को लिखाते जाओ, तुम्हारी ऐसी चौपड़ी छपी होनी चाहिए। उन दिनों सबकी ओपिनियन की एक ज्ञानामृत मैगजीन भी निकाल दी थी 2 मास की, उसमें सब लिखा। तो जब देखेंगे यह तो इतना सबने लिखा है तो खुद भी लिखेंगे, फिर तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी गीता का भगवान कौन है। ऊपर में भी लिखा हुआ हो कि ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है कृष्ण को, कृष्ण तो ऊंचे ते ऊंचा है नहीं। अब ये बात हमें सिखानी समझानी है लोगों को, क्योंकि जो निराकार को नहीं जानते वो तो श्री कृष्ण को ही हाईएस्ट समझते हैं कि उससे बड़ा कोई नहीं है। वह कह न सके कि मां में कम याद करो, ब्रह्मा से भी ऊंचते ऊंच भगवान है ना। मुख्य बात ही यह है जिसमें सबका दिवाला निकल जाएगा। कौन सी बात में? गीता के भगवान की बात में। सबको एक मुख्य बात समझ में आएगी कि बुद्धि योग किससे लगाना है, यही तो मिस हो गया, चाहे सर्वव्यापी के कारण और गीता के भगवान के कारण, कि बुद्धि योग किससे लगाना है ये किसी को पता नहीं चला। बाबा कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि यहां बैठना है, नहीं, सतगुरु को अपना बनाकर फिर अपने घर में जाकर रहो। शुरू में तो तुम्हारी भट्टी थी, शास्त्रों में भी भट्टी की बात है, परंतु भट्टी किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। भट्टी होती है ईंटों की, उसमें कोई पक्की कोई खंजर निकलती हैं। यहां भी देखो सोना है ही नहीं, बाकी भीतर ठिककर है, छोट-छोट चीजें, मिट्टी पत्थर की चीजें हैं, सोना है ही नहीं। पुरानी चीज का मान बहुत है, शिव बाबा का देवताओं का भी मान है ना, सतयुग में तो मान की बात ही नहीं, वहां थोड़े ही पुरानी चीज ढूंढते हैं। आजकल तो पुरानी चीजों की कीमत सबसे ज्यादा, वहां पेट भरा हुआ रहता है, तृप्त आत्मा, सब कुछ है ना, पेट ये नहीं, टोटल पेट भरा हुआ है, भरपूर आत्माएं हैं, ढूंढने की दरकार नहीं, तुमको खोदना करना नहीं पड़ता। द्वापर के बाद खोदना शुरू होता है, मकान बनाते हैं कुछ निकल जाता है तो समझते हैं नीचे कुछ है। सतयुग में तुमको कोई परवाह नहीं, वहां तो सोना ही सोना होता है। पहुंच जाओ सतयुग में, ईंटें भी सोने की होती हैं, कितना सुंदर होगा। आपने कहीं देखा हो भारत में, चित्तूर एक जगह है आंध्र में, एक सन्यासी ने सोने का मंदिर बनाया है, बहुत सुंदर है, 100 फुट लंबा है, 40 फुट चौड़ा है। उसे देखकर वहां बैठकर लगता है कि सोने के महल कितने अच्छे होंगे, चारों ओर खाई बनाई है, उसमें पानी डाला है, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस रहते हैं। और ये केवल 30 साल का सन्यासी युवक, जो देवी का भगत, हम लोग 2 बार जा चुके हैं वहां, अपने लोगों को ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बड़ा मान देता है, वो बेचारे आगे बैठा देते हैं, जितनी देर चाहे बैठो, बहुत कितने अच्छे वाइब्रेशंस हैं। मंदिर तो है, पर सोने के हीरों के वाइब्रेशंस अलग ही होते हैं। वहां आनंद की फीलिंग होती है, बहुत गहन शांति लगती है। जो कल पहले हुआ है, जो नूंद है, वही साक्षात्कार होता है। आत्माओं को बुलाया जाता है, वह भी ड्रामा में नूंद है, इसमें मूझने की दरकार नहीं। समझे बात? उन दिनों संदेशियों में आत्माओं को भी बुला दिया जाता था। जैसे बाबा आते हैं ना, तो कई लोग मूंझते थे, ये कैसे, मान लो कि इन्हें जन्म ले लिया, जैसे दादी आती थी ऐसे, तो लोग कंफ्यूज होते थे, उसने तो वहां जन्म ले लिया, ये कैसे आ गए। तो बाबा कह रहे इसमें मूझने की दरकार नहीं, सेकंड बाय सेकंड पार्ट चलता है, फिर गुम हो जाता है, ये पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र हैं, तुम्हारे ये सब चित्र अर्थ सहित हैं, अर्थ बिगर कोई चित्र नहीं। जब तक तुम किसी को समझाओ नहीं, तब तक कोई समझ न सके। समझाने वाला समझदार नॉलेजफुल एक बाप ही है, अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ये लाइन भी हम लोगों के लिए सिंपल है, लेकिन बहुत बड़ी हो गई। गॉड्स गाइडेंस, भगवान की राय, हर कदम कैसे चले उसकी मत अब हम सबको मिलती है। ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो। किसके हैं हम? ईश्वरीय कुल के। ये बहुत अच्छा नशा है। ईश्वर आकर घराना स्थापित करते हैं। अब तुमको राजाई कुछ नहीं, राजधानी थी अब नहीं है। देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई है ना। गीता से ब्राह्मण कुल भी बनता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है, बाकी और कोई हो न सके। दो ही कुल होंगे वहां, और धर्म नहीं। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्यंत को जान गए हो, आगे तो समझते थे बड़ी प्रलय होती है। शास्त्रों में यही है, पानी ही पानी हो गया, कुछ भी बचा नहीं। पीछे दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण आते हैं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही है ना, बाकी सागर की बात नहीं। अभी तुम बच्चों को समझ बहुत अच्छी आई है, खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे। पढ़ाई अर्थात इसका चिंतन। ये नहीं मुरली 20 बार पढ़ ली और सारी भूल गए। फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं, मुरली 5 बार पढ़ी, फिर पूछो क्या पढ़ा, वो तो याद नहीं है, पढ़ ली बस। हम पढ़ाई से बहुत प्यार करते हैं, पढ़ाई बुद्धि में रहे, उसका चिंतन रहे, उसकी धारणा हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो पढ़ाई के समय भी वही याद आएगा, बुद्धि वहां जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है एक बाप के सिवाय और कहीं भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आती है, फिर यहाँ बैठे भी जैसे सुनते नहीं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, सत्संग में बैठे बुद्धि इधर उधर भागती है। यह तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। इम्तिहान कैसे होगा? लिखत में, पहले करते थे ना हमारे ज्ञान सरोवर में, आजकल नहीं करते। रूपेश भाई कहाँ अर्जुन, पहले अव्यक्त मूल्यों पर एग्जाम लेते थे। बहुत बड़ा इम्तिहान है तुम्हारा। हाँ होना चाहिए भाई, शुरू कराऊं फिर से? रुपेश भाई कहाँ अर्जुन भाई करते थे। अच्छा है लोग मुरली पढ़ते हैं, बीच बीच में होता है अर्जुन बैठा है, बीच बीच में नहीं, थोड़ा करते रहो। अव्यक्त मूल्यां बहुत अच्छी आती हैं, अव्यक्त पाठ वाली भी और संडे वाली भी। 4-5 मुरली लेके, कम से कम 5 मुरली लेकर देखो, एक मास में 4 संडे की चलेंगी, 2 अव्यक्त मिलन की चलेंगी, 6 मुरलियों पर हर मास में एक बार करते रहो तो एक रौनक रहती है। बाकी ये बहुत बड़ा एग्जाम है। एग्जाम हमारा कैसा होता है? बहुत बड़ा इम्तिहान है। प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल पेपर आते हैं ना जीवन में, हमें हर चीज को जो परिस्थिति आती है, समस्याएं आती हैं, किसी की मृत्यु होती है, उसे इम्तिहान समझना है, एग्जाम, और ये लक्ष्य रखना है इसमें हमें फुल मार्क्स लेने हैं। कोई तो जैसे बैठे हुए भी सुनते नहीं, कई बच्चों को तो खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे, बाबा के आगे बैठे होते थे ना। बुद्धि बाप के साथ होगी तो अंतमति सुगति हो जाएगी, इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहां तो तुमको बहुत धन मिलता है, लास्ट पॉइंट ही बहुत नशे की है, बहुत धन मिल रहा है यहाँ, ये ज्ञान खजाना है, इससे ही चारों युग में हम खजाने से भरपूर रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ऊपर पहुंच के ही करना होगा, नहीं तो कहेगा इतनी दूर से कर रहे हो। धारणा के लिए सार, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। मीठा श्रीमत में तो सब आ गए। विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। सेकंड, योग की सेफ्टी के लिए, योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है, देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। आज की ये पॉइंट तो सदा के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। वरदान, हर संकल्प बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव, हर संकल्प बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव, रूहानी प्रभाव, स्थूल प्रभाव की बात अलग, रूहानी, जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो, पावरफुल। हर बोल किसी को हिम्मत उत्साह उल्लास देने के प्रभावशाली हो, साधारण बातचीत में समय न चला जाए, ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्वयं प्रति चाहे दूसरों के प्रति, आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो, सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। ज्ञान तो सभी दूसरों को देते हैं, किसी के शब्दों में बहुत प्रभाव होता है, किसी के शब्द साधारण होते हैं। स्लोगन, ऐसी शुभचिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें, बहुत पावरफुल, डीप, सीक्रेट से भरा हुआ। ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें, हमारी शुभ भावनाएं विश्व को रोशन करती हैं। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए होमवर्क, मन की एकाग्रता ही एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी, एकाग्रता की शक्ति द्वारा अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे। एकाग्रता अर्थात मन को, एकाग्रता की डेफिनेशन, एकाग्रता अर्थात मन को जहां चाहो जैसे चाहो जितना समय चाहो उस समय एकाग्र कर लो, मन वश में हो, ये सब बहुत ही सुंदर गहरी बातें हैं। ओम शांति।